الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیو، ابھی آپ نے آیت 27 سے لے کر 35 تک تلاوت سماعت فرمائی سورہ رعد کی. یہ ہمارا چوتھا سبق ہے سورہ رعد کا، اور چونکہ یہ ایک نسبتاً مختصر سورت ہے تو غالباً یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ سبق بھی ہوگا. اس کے بعد ایک جو ہے وہ رکوع کے برابر جو ہے ہمارا غالباً رکوع سے بھی کم جو ہے وہ سبق باقی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا ہم جو ہے پیچھے سے ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ جب پچھلا سبق ختم ہوا تو اس صورت میں ویسے تو آفات اور انفوں سے بہت زیادہ دلائل لائے گئے ہیں، اور پچھلی قوموں کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے جو ہے وہ خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ جو ہے وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ نشانی کوئی معجزہ لا کے دکھائیں. تو پھر اس کے جواب میں کہا گیا کہ دیکھو، یہ معجزات جو ہے وہ جا بجا پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئی ہیں، تمہارے نفس کے اندر، انفس کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی، تو ان پہ ذرا غور کرو اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچانو اپنے رب کو. تو کائنات میں سے بہت زیادہ کائناتی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس کا رب ہونا، اس کا الہ ہونا، اس سے بہت زیادہ شواہد اور دلائل اور استدلال کیا گیا ہے کائنات کے آثار سے. تو یہ اس صورت کا بہت ہی نمایاں پہلو ہے. تو وہاں پہ پہلے حصے کے اندر توحید کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہے اور ان قدرتوں کا مالک ہے. بعد میں جو ہے وہ نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو جو ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات جو ہے اس کا تذکرہ چونکہ قرآن مجید میں بہت مقامات پہ کیا گیا، یہاں پہ بھی کیا گیا، اور وہ تھا اعتراض تھا کفار مکہ کا کہ اس رسول کے اوپر جو ہے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو یہاں پہ وہ تذکرہ، اس کا تذکرہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفر، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مشرکین کہتے ہیں لو لا لو کیوں لو جو ہے اگر ہے لا انزل الیہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر، لو لا انزل کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر آیتن آیتن جو ہے یہ آیت جو ہے وہ آیت سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ نشانی ہے، اور نشانی سے مراد خاص نشانی ہے معجزے والی. اچھا، یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو لفظ معجزہ ہے قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں آیا. تو معجزے کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی، کیونکہ معجزہ جو ہے ایک غیر معمولی جو ہے نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ریفر کیا گیا ہے آیتم من اللہ آیتم من رب، جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی. اللہ تعالیٰ یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ پیغمبروں کو جو ہے معجزات عطا کیے گئے تو وہاں پہ یہی فرمایا گیا، اور اس کی جمع آیات لائی گئی ہے. یہ ظاہر ہے آیت کا اطلاق معجزے کے اوپر بھی ہوتا ہے، نشانیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ قرآن کی آیات کے اوپر بھی. آیتوں میں ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہ، یعنی اگر یہ رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس کے رب کی طرف سے اپنے رب کی طرف اس کی نشانی بھی کوئی اتاری گئی، کوئی معجزہ بھی اس کے ساتھ دیا گیا تھا، جیسے وہ کہتے تھے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا. قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جو ذلو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، الیہ اس کی طرف، یعنی اپنی طرف، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. یہاں پہ من یشاء کا ترجمہ جو وہ مس ہو گیا ہے، لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دکھاتا ہے. اچھا، ہدایت یہدی کا، ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانا اسے مراد ہے. من انا، और हिदायत दिखाता है, या दोनों ये काम जो करते हैं अल्लाह ताला, मन जिनको वो चाहता है, अनाब जो उसको जो रुजू करते हैं उसकी, उनको दिखाता है मन, उन लोगों को, वो जो अनाब जो लौटते हैं जो रुजू करते हैं उसकी तरफ। अच्छा, ये अनाब जो लफ्ज है, ये अनाबा, वैसे तो इसकी मादा तो नून वाव वा है, और इसका जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है अनाबा जुनीबो इनाबतन, ये दोनों इनाबत जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू में नियाबत भी इसी से होता है। जो है नियाबत किसी को जो है वो अपना नायब बनाना। अच्छा, नायब भी फिर उसी से जो लफ्ज है, मुनीब भी है जो लौटने वाला है बार बार अल्लाह ताला की तरफ, नवाब भी है जो नवाब भी उसी से निकले हुए लफ्ज है, कायम मकाम यानी बादशाह वक्त का या हुक्मरान का या साहिब इक्तदार का, जो शख्स कायम मकाम बन जाए या जिसको जो है वो अपने अख्तियार कुछ तवीज कर दे, तो वो फिर शख्स उस जमान सामने नवाब कहलाता था, जो उसको नवाब का टाइटल दिया जाता था, तो मानी जो है उसके अंदर, और नौबत भी जो है चीजें निकले हुए, तो ये बहुत सारे लफ्ज इसी से उर्दू में जो है निकले। अच्छा, अब ये जो है अल्लाह ताला फरमाया कि उनको अल्लाह ताला मन अनाब जो उसकी तरफ रुजू करते उनको फिर हिदायत देते। अच्छा, अब जो है थोड़ी सी इस अनाब की तफसील है कि ये जो अल्लाह ताला की रुजू करते इनकी ये कौन है, इनकी कुछ खुशियात अल्लाह ताला ने बताया, अल्लज़ीन, ये वो लोग हैं, आमनू जो जो ईमान लाए, वतत्मइन्नु और वो इत्मीनान पाते हैं, वो मुतमइन होते हैं, कुलूबुहुम उनके कुलूब उनके दिल इत्मीनान पाते हैं। अच्छा, ये तत्मइन्ना जो है ये टेंथ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मुश्किल मतलब ये एक लफ्ज है इस लिहाज से, लेकिन जो है ये उर्दू में बड़ा इस्तेमाल होता है, एज इट इज इत्मअन्ना यत्मइन्नु इत्मीनानन, इत्मीनान जो है लफ्ज जो उसका मसदर है वो एज इट इज उर्दू में इस्तेमाल होता है। इत्मीनान पाते हैं बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह खबरदार रहो जान लो, बिज़िक्रिल्लाह अल्लाह ताला का जिक्र। अच्छा, ये जो लफ्ज अल्लाह है ये कोई अलग अलग दो लफ्ज को जोड़कर नहीं बना, बल्कि ये एक ही लफ्ज है अल्लाह, तो ये हरफ तंबीह के तौर पे जो है इस्तेमाल होता है, यानी अटेंशन पार्टिकल है, बी अवेयर ऑफ जो है वो याद रखो, सुन लो, ये इन मानों के अंदर, और ये लफ्ज अपने बाद आने वाले लफ्ज की हकीकत पे दलालत, यानी अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह, अब ये जिक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र के बारे में कोई जो बात बताई जा रही है उसके बारे में ये लफ्ज जो है ये एक जो है मैसेज सेंड कर रहा है, ये एक हेड्स अप दे रहा है कि देखो ये बात बड़ी हकीकत है, इसके बारे में जान लो, तो ये अल्लाह का जो इस्तेमाल होता है जिक्र अल्लाह ताला की याद, तत्मइन्नुल कुलूब, कुलूब को दिलों को इत्मीनान जो है वो देती है, इत्मीनान दिल जो इत्मीनान पाते हैं अल्लाह ताला के जिक्र, लजीना वो लोग जो आमन। अच्छा, ये उन लोगों की अब वो जारी है, वो लोग जो आमन ईमान लाए, आमिल सालेहात और अमल किए उन्होंने सालेहात नेक, तूबा लहुम, तो उनके लिए खुशखबरी है। अच्छा, तूबा जो है ये फरत के मानों में भी इस्तेमाल होता है, खुश नसीबी के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और फिर ये जो है खुशखबरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। नबी करीम की एक मशहूर हदीस मुबारक आपने सुन रखी होगी, जिसमें नबी करीम ने फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, तूबा लिल गुरबा, तूबा लिल गुरबा, तूबा लिल गुरबा, यानी जो गुरबा है, गुरबा से मुराद है स्ट्रेंजर्स, जो है वो स्ट्रेंजर्स के लिए जो अजनबी हैं, अजनबियों के लिए खुशखबरी है, अजनबियों के लिए, तो जाहिर जो है बहुत सारे इससे मुराद फिर वो लोग हैं जाहिर जो दीन पे चलते हैं, और फिर लोग उन्हें जो है अजनबी समझते हैं, यार ये अजीब कहाँ से ये दीन की बात करते हैं, तो ये वो उस लिहाज से वो जो है वो गौरबा है, ये उर्दू वाला, उर्दू में गरीब जो है अगरचे पुअर के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में जो गरीब है ये स्ट्रेंजर के इस्तेमाल, इसका जो है तूबा में खुशहाली, बहुत ज्यादा खैर, फरहत, खुशखबरी मानी शामिल है, और एक जो है कौल है उलमा का कि ये जन्नत में एक दरख्त का नाम भी है, और जिसके बारे में हदीस में आया है कि वो बहुत ही बड़ा होगा, वील होगा, और उसके साए में जो है एक घोड़ा 100 बरस भी जो है वो भागता रहेगा। तो वो फिर उस दरख्त की जो है वो दरख्त की जो छाव है या दरख्त के जो कवरिंग है वो भी खत्म नहीं होगी। तो ये निकला हुआ लफ्ज ताबा यतीबों से तय्यबन, ये चीज का हलाल और पाकीजा होना, उससे ये लफ्ज निकला हुआ है। वह हुस्नु मआब, तो ये तो मतलब नेक लोगों की बताई गई है कि ये नेक जो लोग होंगे जिन्होंने अच्छा अमल किए होंगे उनके लिए खुशखबरी है। और फरमाया कि वह हुस्नु मआब, और बहुत अच्छा हुस्न जो है बहुत अच्छा, मआब ठिकाना, तो उनके लिए बहुत अच्छा ठिकाना। अच्छा, मआब का लफ्जी मतलब होता है लौटने की जगह, अच्छा लौटने का वक्त या लौटने की जगह, चूंकि ये जर्फ है लफ्ज, जर्फ का मतलब जो है ये जो है वो एडवर्ब है यानी, तो जर्फ के अंदर मकान और जमान दोनों चीजें शामिल होती है, टाइम और स्पेस दोनों होती है। तो या उसके जमाने में दोनों चीजें मुमकिन तौर पे हो सकती है, लौटने का वक्त या लौटने की जगह, और फिर जो भी हंसते जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो भी लफ्ज जो है जमान या मकान में से जो भी फिट बैठता है तो उससे तर्जमा कर देते हैं। फिर ये वहुसरो माँ आपको कितना अच्छा है लौटने की जगह यानी ठिकाना उनका। और उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे कहते हैं इज्जत मआब, जिसकी तरफ इज्जत लौटती है। अब हम किसी को इज्जत देनी हो बहुत ज्यादा तो कहते हैं जनाब फलां इज्जत मआब, या फिर रिसालत मआब भी आपको पता है, सुना है आप रिसालत मआब भी होती है। तो रिसालत मआब जिसकी जिनकी तरफ रिसालत लौटती है, मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अरसलना, हमने भेजा था जो है आपको, हमने भेजा आपको फी उम्मतिन, एक कौम के अंदर, एक ऐसी कौम के अंदर, कद यकीनी तौर पर, खलत गुजर चुकी, मिन कबले हा इससे पहले भी, इससे पहले भी गुजर चुकी। अच्छा, ये जो खलत है ता तो तैतानी से जो है उम्मतिन, उम्मतिन उम्मतुन की वजह से, उम्मतिन की वजह से उम्मत जो लफ्ज जो है फेमिनिन है और उस वजह से खलत आया, लेकिन ये लफ्ज जो है खा या फला है, फला इसका वर्ब जो होता है फला यफलू, फला ये वही खला होता है जो उर्दू में हम स्पेस के मानों में इस्तेमाल होते हैं, खाली, इसलिए कि खाली होता है, इसके मानों के अंदर खाली होना, गुजरना, इसी से फिर आपको पता है खलवत ये लफ्ज होता है, ये सारे लफ्ज। अच्छा, तो गुजर चुकी है इससे पहले भी उममुन, उममुन तो कौमें, बहुत सी कौमें, उममुन जो है जमा का सीगा है तो आप तर्जमा कर सकते हैं बहुत सी कौमें, आगे है लितातलू, ताके लामजे ली जो है के लिए, ताके तत्लू आप तिलावत कीजिए, अलैहिम उन पर आप जो है पढ़कर सुनाए उनको। अब पढ़कर ये जो लफ्ज होता है तला यतलू तिलावतन, इसका मतलब तिलावत करना या फिर पढ़कर सुनाना, दोनों तो अल्लजी औहैना इलैका। अच्छा, ये इसका जो है अल्लजी वही जात है जो जो अल्लजी औहैना जो, अच्छा अल्लजी जो सॉरी कि मैंने जो औहैना हमने जो है वही की है, इलैका आपकी तरफ जो वही किया है हमने आपकी तरफ, वहुम और हालांकि, वाव हालिया है, वहुम और हालांकि हम वो यकफुरूना वो कुफर करते हैं, बेरहमान और वो इनकार करते हैं इनका यानी रहमान का। तो जो पहला ऊपर वाला जो जो देखे जो अल्फाज है अल्लज़ी उहैना इलैका, उसका ताल्लुक उस बात से है कि आप तिलावत कीजिए, अब पीछे की ना, आप तिलावत कीजिए लोगों पर क्या चीज, जो वही किया है हमने आपकी तरफ, अल्लज़ी उहैना इलैका वो, यानी आप इनकी तरफ इनको पढ़ के सुनाइए, पैगाम पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बात नहीं। आगे फरमाया कि वहुम यकफुरूना बिरहमान, हालांकि वो इनकार करते हैं, यानी बेशक इनकार किए जाएं ये रहमान का, आप उनको पढ़ के सुनाइए, कुल आप फरमा दीजिए हुवा रब्बी वही मेरा रब, ला इलाहा इल्ला हू कोई माबूद नहीं उसके सिवा, अलैहि उस पर ही तवक्कल तो मैंने भरोसा, उस पर ही मैंने तवक्कल किया। अच्छा, ये जो अलैहि, वैसे तो ये लफ्ज देखो होना चाहिए तवक्कल तो अलैहि, मैंने उस पर भरोसा, लेकिन अगर अलैहि को पहले ले आए तो फिर ये हसर के मानी पैदा हो जाए, उसी पर ही, इन इसमें तर्जमे में होना चाहिए था उस पर ही मैंने भरोसा किया। तो ये जो अलैहि पहले आ गया है इसको तकदीम व ताखीर कहते हैं, तो ये इस मानी में थोड़ा सा जो है बदल पैदा कर देता है मानी में, असर पैदा कर सकता है, पैदा कर सकता है। वह इलैही और उसी ही की तरफ मताब, मेरा लौटना। तो ये जो मताब है लफ्ज, ये भी उसी से आभासी है, लौटने। इसका तर्जमा पढ़ते हैं।
ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपने तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया और इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा अंजाम है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है कि एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है। इस हाल में कि ये लोग कि ये अपने नहायत मेहरबान खुदा खुदा के काफिर बने हुए हैं, इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उस पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा मावा है।
अब ये जो बात बताई गई है कुफार मुशरिकीन का जो मुतालबा था मुइजा दिखाने का, इसी मुइजा दिखाने का, उसकी जो है ये बात की गई है। तो उस पे जो आप ये बड़ी हठधर्मी से जो है मुतालबा कर रहे थे कि ये जो है वो, और ये बार बार थ्रू रिपीट करते रहते थे। और कुरान मजीद में भी कई सूरतों के अंदर इस, अभी जैसे इस सूरत की आयत नंबर 7 में भी इसका तذکرہ हुआ है, फिर सूरह बकरा में आया है, सूरह नाम में इसका तذکرہ है, सूरह यूनस में इसका तذکرہ आया है। तो ये जो है ये मुसलसल जो है वो चीजें आती रही हैं, और इसका जो है वो इसी को फिर आप जहां बेहतरा इसके जवाब दिया गया, इसके जवाब दिया गया है कि लेकिन थोड़ा सा उसलूब बदल के दिया गया कि इन्हें बताया गया है कि तुम्हें रास न मिलने का असल सबब ये नहीं है कि तुम जो है मतलूबा निशानियां तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हें नहीं मिल रही है, या तुम्हारे इस रसूल के ऊपर कोई मुइज़ा नहीं उतरा है, बल्कि असल इसकी वजह यह है कि तुम हिदायत के तालिब ही नहीं हो, तुम ये देखना ही नहीं चाहते हो तुमकी जो है वो हक क्या है, हक की तुम्हारे अंदर तड़प ही नहीं है, आपको जांचने की तड़प नहीं है, उसके आने की तड़प नहीं है। ईमान और हिदायत का रास्ता अल्लाह ताला के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर गौर करने से खुलता है। यानी जो लोग ये रास्ता अख्तियार नहीं करते, देखते नहीं है, उनके सामने जो है वो बात रखी जा रही है, दावत रखी जा रही है, निशानियां रखी जा रही हैं, वो इस तरफ जो है वो उनसे बिल्कुल ही फिर अंधे और बहरे बन कर जो रहते, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको अपनी सुन्नत याद दिलाई है कि अल्लाह ताला अपनी हिदायत उन लोगों को नहीं बख्श जो है देता जो मौजों और कश्मों का मुतालबा करते हैं कि मौजा उतरेगा तो हम ईमान लाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला ये नेमत हिदायत उन लोगों को बख्शता है जो इस कायनात के अंदर उसकी निशानियां देखकर फिर हकीकत के ताले बनते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें शहज़ाद सदर और इत्मीनान कल्ब जो है मिलता है। बेशक इसमें शक नहीं है, ये बात जान लेनी चाहिए, अल्लाह ताला ने रसूलों को इससे पहले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूल आए, वो अल्लाह ताला ने उनको भी उनको मौजज़ात अता फरमाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन एक ऐसे दौर में आए जब ये दुनिया अपने जो है वो इत्तेका की तरफ आगे बढ़ रही थी, इल्म अपना दामन खोल रहा था, मुतमदन हुकूमतों का दौर शुरू हो रहा था, और अपनी तहजीब और तमदन के लिए इंसान को ऐसे दस्तूरी जो है वो चीजों की और कमालात की जरूरत थी जो इंसान के इस शऊरी इर्तका की तकमील में मददगार हो। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, इसलिए इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाना चाहिए था अपने तमाम जो है कमालात के साथ, कि जो इंसान की आगे आने वाली कई हजार साल की जो है आने वाली जो जो और हमेशा के लिए आने वाली जो जरूरतें उनको पूरा कर सके, और वो दिया गया है फिर इस रसूल को कुरान की सूरत। तो कुरान मजीद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजा। अच्छा मेरे अजीज भाई, आप जो है इस बात को गौर कर कि ये जो बात हमने अभी ये बात जो भी हमने कही जो नहीं जिक्र किया है, तो ये इस बात को अच्छी तरह मतलब आप पल्ले बांध लें और इसको जो है नोट कर लें और इसको अपने जो है जहन में महफूज कर लें कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब बतौर मोजा दी गई, और क्यों आपको कोई इसी मोजा ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम की तरफ नहीं दिया गया, तो उसका जवाब जो है वो ये है कि अब इंसानियत को जो इर्तिका इंसानियत जो तय कर रही थी उसको जो तहजीब व तमदन के लिए और इंसान की जो जरूरियात थी उनको पूरा करने के लिए जो उसको जो है हिदायात चाहिए थी, अल्लाह ताला ने वो हिदायात इस किताब की सूरत में नाजिल फरमाई और ये किताब रहती दुनिया तक इंसानों के लिए इन इंसानों की इन जरूरियात को पूरा करती रहेगी। तो ये बड़ा मौजजा है, इस जो है जाहिर इस पे फिर जो है ये गैर मुतबद्दिल है, इस पे जो है तहरीफ नहीं होगी, इसके महफूज रहेगी, ये अपने अजायबात कभी जो है वो इसके अजायबात खत्म ना होंगे, ये अजायबात अपनी मुसलसल रिवील करते रहेगी तमाम जमानों के साथ, इंसान कहीं से कहीं तरक्की करता हुआ इर्तिका की मंजिलें पहुंच तय कर लेगा। लेकिन ये किताब जो है ये जो मुसलसल एक सोर्स ऑफ जो है डिवाइन विजडम और डिवाइन गाइडेंस ये इसके तौर पर इंसानों को जो है वो मुजस्सर होती रहेगी। तो ये बहुत अहम नुकता है, इसको जान लेना चाहिए और इसको याद रखना चाहिए, इसको जो है बयान भी किया जाना चाहिए। तो ये जो है इंसान मुआवजा जो दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये कुरान मजीद की सूरत में दिया गया। तो और इसने फर्द से लेकर इंफरादी जिंदगी से लेकर इंसान की जो इज्तमाही वाशरती जिंदगी है, सिविक लाइफ है इंसान की, और इंसान की एक जो है वो पूरी कलेक्टिव लाइफ है, उस तक तमाम जरूरियतें जो है वो इसके अंदर जो है वो हदायत मौजूद है। और फिर ये इल्म के उन गोशों की रहनुमाई फिर ये करती है जहाँ इससे पहले इंसान की रसाई जो मुमकिन न थी, और इस कुरान जैसी किताब और आफाक कुरान फोर्स में बेशुमार अल्लाह ताला ने जो निशानियां जो है वो रखी है। आप इनसे अगर कोई शख्स आंखें बंद करके मौजों और करिश्मों का मुतालबा करता है तो फिर वो शख्स खुद ही अपनी जो है वो जो उसकी जलालत है उसके ऊपर फिर जो है चिमटे रहने पे विश्वास करता है और हक को देखना नहीं चाहता। अब हक की तरफ रहनुमाई पाने वाले लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो उनके बारे में तफसील बताई कि ये वो लोग होते हैं जो मोजात तलब नहीं करते, इन इसी मोजों के मुतालबात के जवाब बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज के अंदर जो है बयान दे दिए गए और बता दिए गए कि कान खोलकर सुन लो, अगर दिलों की बीनान और ये जो जो शरह सदर है जो है जो की नेमत जो इंसानों को मतलूब होती है वो मोजों और करिश्मों से हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला और उसकी सफात और उसके जो है सफात के तस्करों से उस पर गौर व फिक्र से हासिल होती है। और अगर ये चीज मतलूब है तो फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो है वो बात और दावत को गौर से सुनो, इस पर गौर करो, वरना फिर तुम जो है भटकते फिरो जिस वादी में चाहो और ठोकरे खाते फिरो, और इस रास्ते के अलावा फिर कोई दूसरा रास्ता सीधा रास्ता नहीं है, बाकी सारी जो है वो जलालत तो गुमराही की पगडंडियां हैं जिस पर इंसान जो है सारी उम्र जो है भटकता फिरता है। और जो शख्स भी अल्लाह ताला पर ये बड़ी हकीकत बयान की गई कि जो शख्स भी हकीकी ईमान लेके आता है अल्लाह ताला फिर उसको यानी उसको सोच समझ के कहता है कि वो मेरा मालिक है और मेरा खालिक है और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, मेरा आका है, मेरा माबूद है, और फिर उसको अपना मालिक खालिक आकर तस्लीम कर लेता है, उससे फिर एक और इसी इन्हीं रिश्तों की बुनियाद पे उससे फिर एक गहरा ताल्लुक उसको कर लेता है, अपनी जबान से भी और अमलन भी उसको मुस्तहजर रखता है। यानी ये बड़ा अहम जो है जुमला है कि जबान से और अमल से अल्लाह ताला को मुस्तहजर रखना, हाजिर रखना अपने कल्ब के अंदर, ये तारीफ है जिक्र की। यानी इस मतलब वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, जिक्र का मतलब है कि चाहे अमलन या फिर जो है जबान से दोनों। यानी हमारे यहाँ तो एक गलतुलआम जो है जो जो जिन अल्फाज के मानी तब्दील होके रह गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, उनमें एक चीज लफ्ज जिक्र भी है कि हम जिक्र को क्या समझते हैं कि जबान से किसी जो है वो आयत करीमा की या किसी इस्माए हुस्ना में से किसी अल्लाह ताला के नाम की या किसी खास अल्फाज की जो है वो उसकी जरबे लगाना जो है वो ये जिक्र है। लेकिन जिक्र जो है वो ये है कि अगर जबान बेशक ना भी जपती हो लेकिन अल्लाह ताला को इंसान अपने कल्ब के अंदर मुस्ताजर के ये जिक्र है, तो ये फिर गाड़ी चला रहा है इंसान, अपना काम कर रहा है, किसी असेंबली लाइन पे खड़ा है, किसी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप हाल चला रहे हैं, आप कोई दुनिया का काम कर रहे हैं, आप अपने रब को अपने दिल में अब हाजिर रखा रखा है, ये जिक्र की सबसे आला जो है वो कैफियत, वो मतलब चीज है, ये जिक्र की आला तरीन जो है वो डेफिनेशन के ऊपर आता है। जबान से भी हो तो फबिया, बहुत अच्छा है, जबान तर रहेगी अल्लाह ताला के जिक्र से, और जो है उसके दोरे उसके अलग अपने फवायद भी होंगे। तो ये वो जो है वो शख्स, फिर ये लोग जो होते तो इस मानों के अंदर जिक्र करते हैं, यानी अल्लाह ताला को हर वक्त हाजिर हो सकते हैं कि अल्लाह तू मेरा मालिक है, तूने ये सारी चीजें जो इतने कायनात में जो पैदा की हैं, तू पैदा करने वाला, तूने कोई चीज बेकार पर नहीं पैदा की है, तेरी इतनी नायतें हैं मुझे मेरे ऊपर, तूने ये नेमत मुझे अता फरमाई, ये ईमान की और ये नेमत दी और ये नेमत दी है। तो इनका तज़किरा और इनका ख्याल ही जो है जिक्र की आला तरीन जो है वो शक्ल है। तो जब इंसान अल्लाह ताला के साथ इस फ्रीक्वेंसी पे अल्लाह ताला जो है राबता करता है और हर वक्त अल्लाह ताला को याद करता है इस फ्रीक्वेंसी पे, कि अल्लाह ताला दिल में अल्लाह ताला को मुस्तासर रखता है, तो फिर उसके दिल के अंदर जो उसकी कैफियत जो उस पर नतीजतन होगी, उसके दिल से शकूक व शुबहात निकल जाते हैं चीजों के बारे में, जो चीजें दुनिया में हो रही हैं, फिर उसको पता है कि मेरे मालिक और खालिक इसके पीछे है, और अगर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही इसकी कोई हिकमत है, उसका दिल नूर ईमान से मुनवर हो जाता है, और जो जुल्मत अंधेरे हैं वो जो है तारीखें छट जाती हैं, उसके दिल में पुख्ती पैदा होती है, और दूर दराज के अंदेशा है, दूर दराज जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं, और दिल में इत्मीनान पैदा होता है, और शख्स की शख्सियत को आसूदा कर देता है, और फिर वो हजार खतरात भी उनको परेशान नहीं होता, उसका दिल बड़ा मुतमइन रहता है। जैसे मतलब उसकी मिसाल देख लेंगे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आग जलाई जा रही है, कई दिनों से आग जलाई जा रही है, अब फेंका जा रहा है उनको जो है वो निशाना लगा के या शिकंजे में कस के इसको फेंका जाएगा, लेकिन क्या दिल मुतमईन है, कि क्या इत्मीनान है दिल में, और ये वो चीज है कि ये इत्मीनान, क्या वजह क्या थी कि जो है वो पता है कि मेरे मालिक है और मेरा खालिक है, अगर वो चाहेगा तो मुझे जो है वो इन हालात के अंदर, मैं अगर वो चाहेगा तो बेशक मुझे आग में जला दे, अगर उसकी ये वो है, और अगर नहीं चाहेगा तो ये आग नहीं जला सकती, बिल्कुल नहीं जला सकती, अल्लाह ताला को ने आग को पैदा किया है, और वो जो है वो इसको जब चाहे कहेगा तो वो इसको इसकी अपनी तासीर खत्म कर। तो ये इत्मीनान जो है ये कल, अच्छा मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा जो है वो जोर दिया है कि ये बड़ी मशहूर आयत है, अल्लाह बेजिक्रल्लाकुलूक, अल्लाह ताला की याद से जो है दिल मुतमईन होते, तो इस याद का मतलब क्या है, इसलिए कि हम इसको फिर अच्छी तरह इस मकाम को समझ लें, कि ये नहीं है कि मैं किसी लफ्ज की और किसी बुजुर्ग ने वजीफा बताया उसकी जरबे लगा के तो ये जो चीज है ये मेरा, बल्कि शऊरी तौर पर अल्लाह ताला को अपने दिल में हाजिर रखना, हाजिर करना, उससे ताल्लुक कायम करना, उसके साथ जो है जुड़े रहना, ये जिक्र है, और ये वो ताकत और कुवत है जिससे इंसान का दिल जो है मुतमईन होता है। ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो अल्लाह ताला पर करी हकीकी ईमान लाते हैं, उसे जुड़ जाते हैं, उसके जिक्र को अर्ज़-ए-जान बनाते हैं हर वक्त हर लहजा, और उसकी तालीमात को जिंदगी का दस्तूर, उसकी ज़ात और सफ़ात को जिंदगी का असासा, और उसकी कुवत को असल अपनी कुवत का सच समझते हैं, कि बेशक मैं जो है वो बहुत ही कमजोर हूं, हम कमजोर और जयीफ हैं, लेकिन हमारा रब कमजोर और जयीफ नहीं, वो जब चाहे हालात को बदल दे, और ये तारीख रही है, पूरी तारीख शाहिद है इस पे, जिन लोगों ने फिर अल्लाह ताला पे भरोसा किया, उससे मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उन लोगों की मदद की, नबी अकरम की जो ही फरमाई गई है कि ये अगर जो जो है कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं जो है फरमाइशी मुतालबा करते हैं मुआवजे की, तो अल्लाह ताला मुआवजा दिखाने पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती मुआवजा दिखाकर लोगों को राह रास्ते नहीं लाएगा। आप सबको फरमाया गया कि आप इनके नए जो मुतालबात आते हैं इन पे जो है इनसे दिल अपना तंग ना करें, अल्लाह चाहेगा तो बेशक जो इनको बता दे कि मेरा काम जो है ये तुम लोगों तक पैगाम पहुंचा देना है अपने रब का, ये मोजे दिखाना मेरा काम नहीं है, इसकी हिकमत तो अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत पे मुनसर, अगर वो चाहेगा तो दिखा देगा, और अगर चाहेगा नहीं दिखाएगा तो नहीं दिखाएगा, ये बता दे कि ये मेरी जो है डोमेन नहीं है। मुशरिकीन मक्का को जो है वार्निंग दी गई कि तुमसे पहले भी बड़ी कुवत जो है बड़ी बड़ी हुकूमतें और गुजर चुकी हैं जो बड़ी शान और शौकत ताकत और इल्म में बड़ी आगे थी, लेकिन उन्होंने जब रसूलों को छुटकाया तो देख लो उनके साथ क्या हुआ, हमारा शर भी वही है। तो मैं वलाउ अन्ना अगर, और अगर انا قرآن ہوتا قرآن سجیرت تو چلائے جاتے بہل جبال اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ اگر ہوتا کوئی قرآن, قرآنن ہے وہ ہے یعنی ایک نکرہ کی صورت سے معلوم کی, اگر ہوتا کوئی قرآن کوئی اور قرآن ہوتا سجیرت بہل جبال جس کے ساتھ چلائے جاتے پہاڑ. سجیرت جو ہے یہ سیر لفظ جو ہے سین جی را جس کو مانتا ہے سارا جس کی رو سیرن جو ہے چلنا, اور سیرا جو سجیر و تسیرن جو ہے چلانا. تو پہلی فارم دوسری فارم میں ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو کا فرق ہے. اردو میں پھر سیر بھی ہے چلنا جس کے معنی میں ہوتے ہیں واک, اور سیرت وہ راستہ جس کے اوپر کوئی شخص جو ہے ساری زندگی چلتا ہے. سیرت جس کو وہ بھی چلنے کے معنی, سیرت بھی اصل میں چلنے کے معنی میں ہے. دیکھیں جب الفاظ کے معنی سے کس طریقے سے جو ہے وہ الفاظ نکلتے ہیں, یعنی سیرا سے مطلب ہوتا ہے چلنا, تو سیرت وہ راستہ جس کے اوپر ساری زندگی انسان کوئی چلتا ہے وہ سیرت کہلاتا ہے. اور یہ سیرت کے لفظ سے مخصوص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و صالحین کی جو ہے وہ بایوگرافی کے ساتھ. اور قطعت یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی بہل ارض اس کے ساتھ, یعنی ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کی تاثیر سے پہاڑ چلتے, یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر جاتی زمین ہو جاتی جس کی تاثیر سے, او یا پھر کلمہ یہ کلمہ. دیکھیں یہ سارے کے لفظ جو ہے پیسے واس آئے, کیونکہ پہاڑ قرآن کے ساتھ چلایا, قرآن کے ساتھ ہوتا, قرآن کی تاثیر سے ہوتا, تو اس کے ساتھ جتنے بھی ورب آئے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے. سجیرت, اور آپ کو پتا ہے پیسے واس کی جو ایک نشانی ہے پیش سے شروع ہوتے ہیں جو ورب, سجیرت قطعت کلمہ, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پیسے واس. اور کلمہ یا پھر جو ہے بلوائے جاتے کلام کرنا بلائے, یا پھر کلام کرتے بلائے جاتے بہل موتا اس قرآن کے ساتھ مردے, یعنی یا پھر بلوائے جاتے بولتے قرآن اس کی تاثیر سے مردے. تو پھر بتایا گیا ہے آگے بات چھوڑ دی گئی ہے. اچھا یہ قرآن کے ایک اسلوب ہے, تب ہی یہ ایمان لگاتی یہ بات چھوڑ دی گئی, یعنی اس کی جو ہے قرآن کا اعجاز ہے یہ کہ جو ہے یہ تب ہی مان لیتے. دیکھیے آپ دیکھ لیں کہ بہل اردا اور کل ماں بہل موتا پہ آگے جو ہے برف ہے یہاں پہ جو ہے, تو یعنی پھر بھی یہ ایمان نہ لیتے یہ بات ہے. بل اللہ بل اللہ بلکہ اللہ تعالی الامر جميعا سب معاملات اللہ ہی کے لیے, سب معاملات جو ہے اللہ ہی کے, یعنی سب اختیار اسی کے, تمام اختیارات جو ہے اسی کے. افلم افلم آ کیا فا پس لم نہیں, یئس الذین یا پہلے ہم اس کو لفظ کو جو ہے پڑھا ہے یئسا یئسو یاسن, یہ جو لفظ یاس پہ وہی ہے اردو والا ہے یاس مطلب مایوس ہونا. تو کیا نہیں یئسا, یعنی اگر ہم لفظ تک مایوس ہوئے اللہ دین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی یہ ترجمہ لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے, لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ یا ایسا جو ہے یا یا ایسا جو ہے یہاں پہ یا علموں کے معنی میں آیا ہے, یعنی علم نہیں. تو کیا نہیں علم ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان کے لو یشاء اللہ ہو اگر اللہ چاہتا, لاہدن ناس جمیع اللہ جو لم زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے, تو یقیناً ضرور حدن ناس اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہا لوگوں کو جمیع سب کے سب سب, یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دے گا. تو دیکھیں جو ہے ایمان والوں کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ابھی علم نہیں ہوا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جو ہے وہ سب انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا, تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے یہ, بے شک جو ہے وہ کر رہے ہیں مطالبہ. ولا جزال الذین کفروا ولا جزالو اور ہمیشہ جنہوں نے کفر کیا. اچھا یہ جو لفظ پہلے ایک دفعہ آیا تھا زال جزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا, اگر یہ لا کے ساتھ آ جائے تو نہ زائل ہونا مطلب ہمیشہ کے معنی میں ہوگا, اس وجہ سے جزال کے معنی ہمیشہ نہیں ہے لیکن لا جزال کے معنی جو ہے پھر وہ ہمیشہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے زوال نکلا ہوں اسی وہ, تو ہمیشہ جنہوں نے کفر کیا उसी वहम उनको पहुंचती रहेगी, लगती रहेगी। आपको पता है असाब युसीबो इसाबतन आपर, उसना लगना, जैसे तीर लगता है वो, इसीलिए उस तीर को मुसीब कहते हैं। तो आ लगती रहेगी। अल्लाह ताला ने एक हकीकत बताई है, बेमा उसके सबब उसके साथ, सनाऊ जो उन सना, आपको पता है सना तो हरफत जिसे कहते बनाना, तो उन्होंने जो बनाया यानी उन्होंने जो कमाया या उन्होंने जो किया उसके सबब, कारिया कोई आफत, कारिया जो है यानी जो उन्होंने करतूत किए या उनकी जो उन्होंने बनाया जो कमाया जो कर रहे हैं उसके सबब उनको आ लगती रहेगी कोई आफत। अच्छा ये जो आफत है ये कर आ या करो, करन जो है खटखटाने को, बहुत जोर से कूटना पीटना, तो उस मानों में फिर कोई कार्य अलकार्य तो मलकार्य जैसे अचानक आने वाली मुसीबत को जो है कार्य कहा गया। तो कोई ना कोई मुसीबत उनको आ लगती रहेगी। अल्लाह ताला ने ये जो है वो बात रही। ओ या फिर तहुल्लो करीबन, ओ तहुल्लो करीबन या हमेशा, हमेशा तो का लफ्ज जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए है कि परंथेसिस में इसलिए है कि ऊपर जो है यजाल में हमेशा आ गया, तो यहाँ भी वही है, औ आया है ना, तो पीछे या वाली हमेशा वाली बात साथ रहेगी। तहुल्लो तो फिर उतरती रहेगी आफत करीबन उनके नजदीक ही, या तो फिर उनके ऊपर कोई आफत आती रहेगी या फिर उनके करीब आसपास कोई आफत आती रहेगी। अच्छा ये लफ्ज जो है हा लाम लाम जो है हल्ला जहल्लो हल्लन जो होता है हल्ला जहल्लो हल्लन व हलूलन, ये दोनों लफ्ज हल हलूल उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसके मानी होते हैं दाखिल होना और आन गिरना। लेकिन इसमें ये भी याद रहे कि तीन मानी इसमें पाए जाते हैं। जो तीन मानी, तीन मानी क्या है? पहला ये है कि किसी चीज की गिरा खोलना, जैसे रब शरख ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उकदतन वाहलुल, यही वो लफ्ज है गिरा खोलना, वाहलुल और खोल दे मेरी गिरा जबान की। तो किसी चीज की गिरा खोलना, जैसे हल होना महलूल। अच्छा देखे जो कोई चीज अगर आप कोई कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है या कोई शरबत है जैसे वो अफजा है पानी में डाल रहे हैं तो क्या होगा? हल हो गई। वजह क्या है कि उसकी जो है गिरा खुल गई महलूल की, आपस में मिक्स हो गई महलूल बन गया। हलूल भी है कोई चीज एक दूसरे के अंदर जो है दाखिल हो गई है घुस गई है, और तहलील भी उसी से निकल। दूसरा मानी है किसी जगह रहना, ये हा लाम लाम ये अलग अलग मानी है तीन, देख लें मादा एक ही है उसकी। ओ यही वही है, ओ तहुल्लो रहना करीब जा फिर और। अच्छा ये होता है किसी जगह पे जाकर उतरना और रहना, ठीक है, तो ये उस मानों के अंदर आता है हल्ला। तो इस वजह से जो लफ्ज महल्ला होता है रहने की जगह या बहुत सारे रहने के, या फिर महल होता है, महल के माने भी वही होती है रहने की जगह, बादशाहों के रहने की जगह, तो जो है वो ये दूसरा मानी है किसी जगह पे रहना। इसका मानी होता है किसी जगह पे उतरना और जाके रहना, ठीक है। तो अच्छा तीसरा लफ्ज होता है जो इसके मानी होते हैं वो किसी चीज का जायज होना, जायज होना हलाल होना, जैसे मतलब कुरान मजीद में आया फरमाया गया कि ला यहलुल मुस्लिम यहाजर अखाहू फौक सलास, ये हदीस मुबारक है कि किसी मोमिन के लिए जायज और हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा जो है वो बात ना करे। या फिर कुरान मजीद में तो बहुत ज्यादा है लाज तुम जो है तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि औरतों के जबरदस्ती जो है वारिस बन जाओ, इस तरह के बहुत सारे। तो ये हलाल होना जायज होना ये तीन मानी पाए जाते हैं। मिन दारहिम उनके घरों के, इन उनके घरों के आसपास जो उनके ऊपर खुद जो है आफत उतरेगी या फिर उनके घर। तो ये थोड़ा सा ये आयत का तर्जुमा इसकी तवज्जो चाहता है, ये मुश्किल है, इसलिए जो है ये मतलब इस पर तवज्जो रहे कि या तो उनके करतूतों के सबब उन पर कोई आफत नाजिल होगी या उनके आसपास जो है घरों के आसपास जो है कोई मुसीबत आती रहेगी जिसको वो देखते रहेंगे, हत्ता यहाँ तक कि जाति आ पहुंचे वादुल्ला अल्लाह का वादा आ पहुंचे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युखलिफु नहीं खिलाफ करता अलमियाद वादे के, अल्लाह ताला अपने वादे के लिए अखलफा जो युखलिफ खिलाफन खिलाफ करना जो।
और क्या ये होता कि अगर कोई कुरान, कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते या जमीन शक हो जाती या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते, इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है। बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए हुए बैठे हैं और ये जानकर मायूस नहीं होगे कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया अख्तियार कर रखा है, इन पर इनके करतूतों की वजह से कोई न कोई आफत आती ही रहती है या इनके घर के करीब कहीं नाजिल हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता।
अब ये जो पूरा यहाँ पे रुकू भी मुकम्मल हो रहा है और यहाँ पे जो है वो पूरा मजमून है जो सारा पीछे आयात में बता दिया उसकी अब तकमील भी हो रही है। और जो है लेकिन यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि ये खिताब कुफार को नहीं है बल्कि ये खिताब मुसलमानों को बताया जाता है कि जब मुसलमान बार बार सुनते थे निशानी का मुतालबा यानी कुफार कर रहे हैं, उनके दिलों में बेचैनी पैदा होती कि देखिए अगर अच्छा होता, अगर उनके दिल में होता कि अगर अल्लाह ताला जो है वो कोई ऐसी निशानी जो उतार देता तो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुतल्लिक जो लोगों के दिलों में शुभात है ये खत्म हो जाते। तो जब कोई ऐसी निशानी नहीं उतर रही थी तो उनकी बेचैनी इजाफा हो जाता। तो अब मुसलमानों को जो है खिताब किया जा रहा है कि देखो अगर इनके लिए कोई ऐसा कुरान भी उतारा जाता जिससे पहाड़ हरकत में आ जाती है, जमीन शक हो जाती, तो तुम क्या वाकई ये समझते हो कि ये लोग ईमान लाते? अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये तब भी ईमान नहीं लाते बल्कि उस वक्त भी ये अपने कुफर पे अड़े रहते और फिर जो है उसके लिए कोई ना कोई बहाना तलाश कर। मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि निशानियों को न दिखाने की असल वजह यह नहीं है कि अल्लाह ताला निशानी दिखाने पे कादर नहीं है बल्कि असल वजह यह है कि इन तरीकों से काम लेना अल्लाह ताला की मसलहत के खिलाफ। वो चाहता है कि अल्लाह ताला लोग जो है अपनी अकल को और बसीरत को इस्तेमाल करें और आफाक और अनफुस के दलायल पे गौर करें और इस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सोचें, सुने और समझें और फिर अपने अख्तियार और इरादा की आजादी के साथ अपनी इस राह हक को जो है अख्तियार करें। ये असल वो बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि निशानी जाहिर नहीं हो रही है। वक्तन फवक्तन इनकी करतूतों की पादाश में खुद इनके ऊपर या फिर इनके आसपास के जवार में लोगों पे अल्लाह ताला मुख्तलिफ तंबियात उतारता रहता है और उनका मकसद यही होता है कि ये लोग जागें, आंखें खोलें, पैगंबर की बात को सुने और समझें। लेकिन ये इनसे कोई सबक नहीं लेते बल्कि ये मुंतजर हैं कि अल्लाह ताला का कोड़ा जो है इनकी खुद इनकी कमर पे जो है बरसे तब ये लोग जो है मानेंगे। वालाकत और यकीनी तौर पर डेफिनेटली बेशक उस तोहजी मजाक उड़ाया जा चुका है। ये भी पैसे वाय से ये इस्तेजा यस्तहजियो इस्तेजान और उर्दू में ये लफ्ज इस्तेजा इस्तेमाल होता है। इस्तेजा के मतलब मजाक उड़ाना, खुद दोनों लफ्ज जो है इस्तेजा खुद अरब उर्दू में इस्तेमाल होता है मजाक उड़ाना। और बेशक मजाक उड़ाया जा चुका है यरूशलेम रसूलों का बिन कबले से पहले आपसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। अम लैतुल्लज़ीना अम लैतु मगर वापस अम लैतु हमने ढील दी। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने ढील दी। अच्छा तो अम लैतु मैंने ढील दी लेकिन तर्जमे में हम जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो अदब और एहतराम की बिना पर हम का तस्दीक इस्तेमाल किया गया लेकिन अम लैतु का जो है वो जो लफ्जी तर्जमा है मैंने ढील दी लिल्लज़ीन उन लोगों को जिन्होंने पफरू कुफर किया तुम मस्त तुम और फिर हम इनको पकड़ लिए। अच्छा ये अमला जुमली इमला ये लफ्ज जो है ढील देने के मामले में कुरान मजीद में कई मकाम पे आया है। इसके बाद इसको भी जो है सीख लें। फकैफा तो देख लें फिर पास देख लो कान था कैसा था मेरा इकाब। अच्छा ये जो इकाब है लफ्ज इकाब का लफ्ज जो है अजाब के मानों में है। तो कोई भी जो अकब वैसे तो अकब का मतलब पीछे होता है तो कोई भी अमल के पीछे जो उसका नतीजा जो उसकी जजा और सजा है वो इकाब है। यानी इस लिहाज से फिर जो है चूंकि कुफर किया है तो कुफर का जो जो बाद में जो जजा होगी सजा होगी वो अजाब ही है। इसलिए फिर अजाब जैसे इकाब का माने अपने मन अजाब नहीं होते ये फिगरेटिव मीनिंग है। इकाब असल में ये लफ्ज जो है देखिए इकाब फकै फकाना इकाब ये पा के नीचे जेर है तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये लफ्ज जो है आगे या जो है वो था माजूफ कर दिया हजफ कर दिया गया एकाबी था मेरा अजाब। तो ये जेर जो है ये छोड़ इसीलिए दी जाती है कि ये बताए कि असल में लफ्ज एकाबी था। आफ़ अमन पस तो क्या पस जो मान जो हुवा कायमुन, जो कायम है, जो निगरान है। अच्छा, कायम का जो है वो उर्दू मानी तो जो है वो खड़ा होना होता है सिर्फ, लेकिन अरबी में इससे ज्यादा वसी मफहूम है। अच्छा, कोई शख्स अगर किसी सर पे खड़ा है, उसको देख रहा है, तो वो फिर निगरानी के मानों में आता है। इस वजह से इसके मानों में निगरान है, मुहाफिज, शाहिद, निगरान सारे मानी होते हैं। और किसी पर कायम होने का मान ये होता है कि उसकी जिंदगी के तमाम उमूर में अख्तियार रखना, उसके उमूर की तदबीर करना, उसके नज्म जब देना, ये मानी है। तो इस मानों में फिर वो निगरान है। अल्लाह ताला अल-कायम है, वो इस मानों में भी अल-कायम है कि उसने तमाम कायनात को जो है वो कायम कर रखा है। अला कुल्ल नफ्सिन, हर जानदार के ऊपर, और खासतौर पर वैसे तो अगर कहें तो कहें कि हर नफ्स के ऊपर, हर जान के ऊपर, हर जानदार के ऊपर, लेकिन आमाल का इसमें जो है वो सेंस इसलिए है कि आगे कसबा क्लास में माँ कसबा, जो उसने कमाए हैं, तो कमाए जो है अमाल जाते हैं, अमल कमाया जाता है, उसके नतीजे कमाया जाता है। इसलिए फिर हर जानदार के अमाल पर जो है ये उसमें मानी पोशीदा है, इसीलिए इनको जो है परंथेसिस ने बयान किया गया बीमा का सबक। तो देखिए, आप फिर वही बात, आप ऊपर पहली लाइन जो बिल्कुल टॉप की है उसमें देखें, फिर मैं आफा मन हुआ कायम अला कुल्ल नफ्सिन बीमा का सबक, यहाँ पे वक्फे जायज है, जीम आपको छोटा सा जीम देखते हैं। अच्छा, ये बात पूरी की, लेकिन ये बात अधूरी है। ठीक है, आगे जो पढ़ने वाले हैं उनके मिजाज के ऊपर, उनके जो इंटेलेक्ट है उसके छोड़ दिया गया कि क्या है। तो ये खुद बहुत बात वाजह है, फरमाया कि तुम्हारे ठहराव शुरू की जैसे, तो क्या जो कायम है, जो निगरान है, जो निगरानी कर रहा है, जो मुहाफिज है, जो शाहिद है, जो हर चीज देख रहा है तमाम जानदारों के अमाल को, क्या तुम्हारे ठहराव शरीकों जैसा हो सकता है? ये वो बात है। और यहाँ पे इस वजह से कि हर कोई को खुद यहाँ पे फिल इन कर ले, वजालू, और यहाँ पे आगे ये नई बात शुरू है, और फिर भी बनाए, यानी फिर भी का मतलब है इस वजह से कि उसके मानी जो पोशीदा है, अजालू बिल्लाह अल्लाह के लिए शुरका, तो फिर भी बनाए लोगों ने शरीक अल्लाह के, यानी इसके बावजूद भी देखे कोई कोई लॉजिक नहीं है, कोई ये जो उन्होंने बना रखे वो उन जैसे नहीं है, फिर भी जो है लोगों ने शरीक बनाया। कुल, इनसे कह दीजिए, समूह, इनके नाम लीजिए, नाम बताइए, इनके सिफात बताइए इनकी, समाज समी तस्मियत, नाम लेना, नाम रखना मानी होते हैं, तस्मी ऐसी सलाह वो है। अम, तो क्या, अम के मानी या भी होते हैं, अम के मानी क्या भी होते हैं, तो क्या, तो नब्बे ऊना, तुम खबर दे, तापिश तू जो सेकंड पर्सन वाला, नब्बे ऊ नब्बा आ नब्बे हो तम्बीन खबर देना, तो क्या तुम खबर दे रहे हो उसको अल्लाह को, यानी नब्बा नब्बे तबीयत खबर देना, उर्दू में नब अम्बिया नबी, नबी मतलब खबर देने वाला, तो क्या खबर दे रहे हो अल्लाह ताला को, बिमा ला यालम, बिमा ला उस चीज की, यालम वो जानता है, फिर जो कुछ जमीन में वो जानता है उसको, इसकी तुम खबर दे रहे हो अल्लाह ताला को। अम, या फिर बजाहिर मिनल कौल, या फिर ये एक जाहिर कौल है, ये दोनों लफ्ज जाहिर और कौल जो उर्दू के इस्तेमाल होते, जाहरी कौल है, यानी फरमाया कि बिल्कुल जाहरी सी एक तुम्हारी अफवाह लबों की और तुम्हारे होंठों की एक बात है जिसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि जुजेना मुजयन कर दिए गए हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए खुशनुमा बना दी, उन लोगों कफरू जिन लोगों ने कुफर किया, मकरूहम उनका मकर, उनका मकर इन लोगों के लिए, ये मकर है सारा जो ये कर रहे हैं, तो उन सद्दू अन सबीलिल्लाह, और वो रोक दिए, सद्दू सद्दा सद्दू सद्दम सदूद,
हाँ
रोकना रोकने के मानों में इस्तेमाल होता है, और वो रोक दिए गए अन सबील, बड़े रास्ते से, शाहराह से, शाहराह हिदायत से, राह रात से, फिर वमई युद्लिल, और जो भी वमई युद्लिल, और जिसे वमन और जिसको युद्लिल अल्लाह ताला जो गुमराह कर
बिल्कुल
दे, अदल्ला युद्लिल दलालन गुमराह करना, फमा लहू मिन हाक, उसके लिए नहीं है कोई हादी हिदायत देने वाला।
तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या जो एक एक मुतनफस की कमाई पर नजर रखता है उसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर वाकई खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो तुम जरा उनके नाम लो। क्या कि वो कौन है, क्या तुम अल्लाह की एक नई बात अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी ज़मीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है क्या डालते हो। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया है उनके लिए इनकी मकारियाँ खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं।
जज़ाकअल्लाह खैर। अब ये बताया जो है हिकमत बताई जा रही है सामने तारगीन की कि जो है वो इनकी जिद और इनके मुतालबे के बावजूद इन पर जो अजाब नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला इनको मोहलत दे रहा है ताकि इन पर जो है वो जो हुज्जत तमाम हो जाए। और पहली उम्मतों पर अजाब जो है उनके कुफर करने के फौरन बाद नहीं आ गया था, बल्कि अल्लाह ताला उनको भी मोहलत देता चला गया ताकि वो अपने रवैये पे गौर करें, उसको समझें, अपने चाल चलन को, अपने तर्ज जिंदगी को बदलें। और वो बिल्कुल फिर उन्होंने इनकार कर दिया और किसी तरीके से अपने हालात को बदलने पे तैयार नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर अजाब उन पे बरसाया और उसकी मिसालें जो है तुम्हारे सामने कौम नूह की, कौम हूद, साले कौम लूत, कौम शुएब और कौम फिरौन की मिसालें जो है उनके अंजाम से फिर वो करो जो है वो सबक सीखो। तो अल्लाह ताला का इन्हें शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी है संभलने के लिए, एक मौका दिया है, और जब ये मौका हाथ से जाता रहेगा तो फिर तारीख भी इनकी तारीख भी जो है फिर सब कौमतों की तरह इनका जो है वो इबरत का निशान जो है बना दिए जाएंगे। और फिर मैं अफमन वाला कुल नफ्स में माँ कसबत, आधी बात बता के आधी बात छोड़ दी गई है, तो क्या वो जाहिर जो वो क्या वो जात जो हर जान के अमाल की निगरानी कर रही है और जो हर एक कौलोफेल का मुहासबा करने वाली है, उसके शरीक तुम ऐसी लोगों को ऐसी चीजों को बनाई हुई है जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जिनके पास कोई अख्तियार नहीं है। तो एक तहकीर की गई है मुशरिकीन की इस सवाल से कि जिनको तुम अल्लाह ताला के शरीक बनाते हो उनका कोई कमाल, कोई कारनामा, कोई सिफत बयान करो जिससे उनका कोई इस्तेकाक जाहिर हो। और ये मजमून कुरान मजीद में सूरह आराफ के अंदर भी, सूरह यूसुफ के अंदर भी, सूरह नजम के अंदर भी जो आ चुका है। अगर अल्लाह ताला का कोई शरीक होता तो जरूर उसे जानता, और अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है जाहिर है, और अल्लाह ताला ऐसा कोई अल्लाह ताला के इल्म कोई ऐसी नहीं है, तो जाहिर है इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो लाजमी तौर पर अल्लाह ताला का कोई कायनात में ऐसा शरीक है ही नहीं है। तो ये तुम सिर्फ सिर्फ जो है वो झूठी कहते हो। यहाँ पे शिर्क को मकारी कहा गया है और उसकी वजह यह है कि जिन अजरामे फलकी और फरिश्तों और बुजुर्गों को जो है इंसानी बुजुर्गों को या जिन्हों को खुदाई सिफात और अख्तियारात का हामिल करार देकर लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, तो उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा खुद कि हम जो है ये इन 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 इन, इन सलाहियतों के और इन सिफात के मालिक हैं, जो उलुहियत की सिफात है, जो डिवाइन जो है प्रॉपर्टीज है, कभी इसने नहीं कहा। बल्कि ये आगे बहुत से कुछ चालाक इंसान होते हैं जो वहां पे अपनी खुदाई के सिक्के जमाने के लिए या फिर अपने माली मफादात के लिए, कमाई में हिस्सा डालने के लिए जो है ये अकीदे इस तरीके बनाते हैं, और लोगों की जो इस्तेसाल करके जो है वो लोगों का माली इस्तेसाल करके भी और उन लोगों का रूहानी और जो है वो मजहबी इस्तेसाल करके भी अपना उल्लू जो है वो सीधा करते हैं। और दूसरी इसकी वजह ये भी होती है कि ये एक फरेब नफ्स है, ये एक चोर दरवाजा है जिसके जरिए से इंसान दुनिया परस्ती के लिए जो है अपनी अखलाकी बंदिशों से बचने के लिए, गैर जिम्मेदारा जिंदगी बसर करने के लिए राय करते कोई खुदा नहीं है भाई जो जो है दुनिया यही है, और फिर अपने जो है ये काम करता है। तो ये दो वजह है जिनको मक्कारी कहा गया है शर्क को। जब इन मुशरकिन ने दावत हक को मानने से इनकार किया तो कानून फितरत के मुताबिक उन लोगों के लिए भी गुमराही पे कायम रहने के लिए, महज अपने किरदार और पेशवाई को बचाने के लिए जो है ये इनकी मक्कारी अल्लाह ताला ने उनके लिए खुशनुमा बना दी, और इसी फितरी कानून के मुताबिक फिर वो राह रास्त पर आने से जो है वो रोक दिए गए। और जानबूझकर हक को झुठलाने और बातिल की हिमायत करने पर अल्लाह ताला के कानून की फिर इंसान जद में आ जाता है, वो हिदायत नहीं पाता, इनके ऊपर भी अल्लाह ताला किसी कानून के जो इतलाक हो रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व जज़ाकुल्लाह खैरन।